ओके, नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई। ऑल्दो इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई जो है वो एक बहुत कॉमनली केस, ऐसा बहुत ही कॉमन केस नहीं है जो हमें ओपीडीज में नज़र आता है, लेकिन इसकी जो लेशंस होते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत से कॉमन डिजीज़ की प्रेजेंटेशन की तरह होती है, जैसे कि लीनियर LP, लीनियर सोराइसिस। सो इस वजह से हम इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई को ज़रूर डिस्कस करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि जब हम इस तरह का कोई केस देखना है जिसमें लीजन्स इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई की तरह दिखते हैं तो हमें कौन से जो एग्जामिनेशन एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखना है ताकि हम अपनी डिफरेंशियल्स को भी अलाइन कर सकें और फिर अपने केस को डिफेंड भी करें। सो एज़ वी नो कि इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर विच इज़ इनहेरिटेड इन अ पैटर्न ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड द जीन इज़ नीमोजीन IKBKG एंड सिंस इट इज़ एन एक्स लिंक डोमिनेंट जीन सो इट विल प्रजेंट इन द फीमेल्स वेयर इज़ इट विल बी लीथल इन द मेल्स। देर आर 4 स्टेजेस इन द इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई depending upon the type of the presentation of the case. In stage 1, usually there is vesiculobullous lesions or vesiculopustular lesions. In stage 2, there will be verrucous lesions. Stage 3, there can be hyperpigmented or hyperpigmented lesions. And then there may be atrophic scarring present on hairless patches may be present. सो जो भी केस हमारे पास आएगा हमने उसमें बेसिक लीजन को एग्ज़ामिन करते हुए पहले अपने माइंड में डिसाइड करना है कि अगर ये इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई का केस है तो वो कौन सा स्टेज हो सकता है। उसके अलावा इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई के जो दूसरे फीचर्स हैं उनमें हमें मिलता है एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया इन विच द अपेंडिजेस ऑफ द स्किन विल बी अफेक्टेड, दैट इज़ द हेयर, नेल्स एंड द टीथ। Other than this, in the systemic involvement, there can be involvement of the brain or neurological system may be involved, and there will be involvement of the eyes, that is the retina. In the appendageal involvement or the presentation of ectodermal dysplasia will be involvement of the hair, in which we can see alopecia, there will be nail dystrophy, or there can be involvement of the teeth, in which the teeth may be totally absent, or they may be delete eruption of the teeth, they can be hypodontia or they can be conical shaped teeth. In neurological involvement, they can be either hydrocephalus, macrocephaly, spasticity, ataxia, seizures or mental retardation. In the eyes, there will be neovascularization of the retina leading to visual loss, cataract or strabismus. So, जब हम अपनी examination scheme को discuss करेंगे, इसके इन्हीं features को हमने अपने mind में रखना है। उसके अलावा क्योंकि इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटाई के जो लीजन्स होते हैं वो यूजुअली लीनियर सेगमेंटल या ब्लास्को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो सकते हैं, तो इसके डिफरेंशियल्स में हमने अपने वो सारे केसेस को अपने माइंड में रखना है जो कि इस तरह प्रेजेंट करते हैं, लाइक कॉनराडी हनरमैन हैपल सिंड्रोम, चाइल्ड सिंड्रोम, ये भी इनमें भी हमें ब्लास्को लीनियर या फिर लीनियर लीजन्स मिल सकते हैं। उसके अलावा in the age of an infant, if we are getting any kind of a vesiculobullous lesions, तो फिर हमारे पास differentials में CBDC, congenital bullous ichthyosiform erythroderma, congenital erythropoietic porphyria और EB को भी हम अपने mind में रखेंगे। उसके अलावा mastocytosis, infections में herpes simplex virus, bullous impetigo और tetra S, इनको भी हम अपने माइंड में रखते हुए अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे। अदर देन दिस, इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल्स में अगर एज ब्रैकेट हमारे पास ज़्यादा थोड़ा एल्डरली मतलब यंग पेशेंट्स में आता है, तो जब हमारे पास लीनियर लीजन्स आते हैं तो हम अपनी दीदीज़ में रखते हैं लीनियर LP, लीनियर सोराइसिस, लीनियर डीरियर, एल्विन, या हम कह सकते हैं वेरुकस एपिडर्मल नेविस। जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी उसमें हमने पहले ये देखना है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट, व्हिच इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द लीजन्स, व्हाट इज़ द साइट व्हिच इज़ अफेक्टेड, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड कंप्लीट आवर एग्जामिनेशन।